मेरे जिगरी नौजवान साथियों नमस्कार। AFAIS के आज 9 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिनका नाम है सागर कुमार, गांव है इनका फरहा, ये बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों कल भी मुझे बहुत से मेल मिले हैं, कल मेरे पास 28 पेज के मेल आए हैं और कल के मेल के चरित्र की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि डेली ऑडियो लेक्चर में मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूं उसके बारे में आप सबकी राय थी। वहां टीचर्स डे नहीं था तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इस एक्टिव होने के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों मैं बधाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बधाई आप कब देते हैं? जब कोई बहुत अच्छी घटना घटित हो जाती है और यह घटना घटित हो गई। मैं इसे इस रूप में एक अच्छी घटना के घटित होना मान रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अदरवाइज ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि ठीक है वो बता देगा वो बता देगा वो बता देगा, अरे सर तो समझदार ही हैं, वो जैसा चाहेंगे ठीक हमारे लिए करेंगे, हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, उसे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है, मेरे बदले में वो लिख देगा। हम टालते हैं, हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो दूसरा भी ऐसा ही सोच रहा होगा, तीसरा भी ऐसा ही सोच रहा होगा, हर कोई ऐसा सोच रहा होगा, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, मामला खत्म हो गया। लेकिन कल की घटना बता रही है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा जैसा मैं अभी कह रहा हूं, आप लोगों ने वैसा सोचा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मैं एक दो बातें आप लोगों को उसके बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो सलाह है मैं उसे सिरोधार्य करता हूं, हम इसको दिन पर नहीं बांधेंगे कि नहीं हम मंगलवार को करंट अफेयर्स का देंगे और बुधवार को फिर बेसिक्स बताएंगे और फिर बृहस्पतिवार को करंट अफेयर्स का देंगे। हम इसको स्वतंत्र रखते हैं, आजाद रखते हैं, जिस तरह की घटनाएं घटित होंगी हम उसको आधार लेकर के चलेंगे, लेकिन हाँ जो हमारा संबंध है वो डेफिनेटली करंट अफेयर्स से ही होगा, उसका ज्यादातर संबंध करंट अफेयर्स से होगा। मैं अपने सभी स्टूडेंट को ये इंश्योर करना चाहूंगा जो मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को काफी समय से सुन रहे हैं कि अगर मैं किसी टॉपिक के बेसिक्स पर बात कर रहा हूं तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल ये मत लाइए कि मैं करंट अफेयर्स की उपेक्षा कर रहा हूं या आप करंट अफेयर्स को जानने में आपकी कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि कुछ मेल इस तरह की आशंका वाले मेरे पास आए कि सर फिर तो हमारा करंट अफेयर्स अधूरा रह जाएगा। नॉट एट ऑल, सवाल ही नहीं उठता। ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये बेसिकली करंट अफेयर्स पर बेस्ड ही है। दूसरी बात जो मैं बेसिक्स पर जो जिन टॉपिक्स का चयन करूंगा ये मान करके चले कि उसका भी संबंध कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में भी उन्हीं चैप्टर्स पर उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान है कि कल मैंने आप लोगों से संविधान की आत्मा के बारे में बात की। संविधान की आत्मा मान लीजिए कि मैंने एक टॉपिक चुना, क्यों चुना, क्योंकि उससे पहले एक घटना ऐसी घटित हुई थी जिसके आधार पर हम सब अनुमान लगा सकते थे कि अब यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? तो हम इसको इस पैटर्न पर लेकर चलेंगे। और दोस्तों सीधी सी बात है कि आप लोगों के हितों के साथ मैं किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता, इतना आप विश्वास रखिए। मेरे दिमाग में ये जो बात आई है वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि आप लोगों का और ज्यादा हित सद सके और ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए और अधिक उपयोगी हो सके, राइट? तो मैं समझता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी बहुत इस तरह की आशंकाएं रही होंगी वे और भी स्पष्ट हो चुकी होंगी, लेकिन इसके बाद भी यदि आप कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पहुंचाएं, आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं भारत ईरान संबंध पर कुछ बातें करूंगा, ये करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, हालांकि दूसरी घटनाएं ऐसी कुछ ज्यादा है नहीं। प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि मीडिया की प्रशंसा की, है ना, मीडिया की जो उन्होंने प्रशंसा की इस आधार पर की कि इस कोरोना संकट में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाई और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहां मीडिया बहुत प्रशंसा की पात्र है। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होता है हमारे पास तीन पक्ष होते हैं। एक घटना है, उस घटना की कुछ अच्छाइयां हैं, उस घटना की कुछ बुराइयां हैं, कमी हैं, और इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति क्या है। तो आदर्श स्थिति हम निकालते हैं कि हमारे समाज की जरूरत क्या है, हमारे अभी का वक्त कैसा है, हमारा संविधान क्या कहता है, किन बातों से हमारा हित सध सकता है, वो एक तीसरा पक्ष होता है। तो सामान्यतः किसी भी घटना के ये तीन पक्ष होते हैं। तो नो डाउट कि मीडिया अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी हमें जानना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मीडिया के अभी दो रोल हम देख रहे हैं। एक आप सोशल मीडिया के बारे में देख रहे हैं कि सरकार ही कितनी आलोचना कर रही है, फेसबुक के खिलाफ चिट्ठी लिखी जा रही है, संसदीय समिति के सामने इन सोशल मीडिया को बुलाया जा रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक के जितना भी इंस्टाग्राम वगैरह है इनकी बहुत जबरदस्त रूप से आलोचना हो रही है। तो ये उसका दूसरा पक्ष है। इसका तीसरा पक्ष क्या है, इसका तीसरा पक्ष है कि मीडिया का रोल क्या होना चाहिए। तो जब हम मीडिया का रोल क्या होना चाहिए इस पर बात करते हैं तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। एक है हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल है, दूसरा यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मीडिया को क्या अधिकार दिए हुए हैं, ये हमें जानना चाहिए। इसका एक और इंपॉर्टेंट पक्ष है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक बनता है दोस्तों, वो है मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल, आप देखिए कि सुशांत के हत्या आत्महत्या के मामले में, हम इसमें दोनों शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक कि सीबीआई इसको क्लियर नहीं कर देती कि हत्या हुई है या आत्महत्या सुशांत जी ने की है, तब तक हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, अब आप देखिए कि इसमें एक प्रकार का मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया ट्रायल क्या होता है, एक ट्रायल तो कोर्ट में चलता है, मुकदमा चल रहा है, वकील अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, न्यायाधीश सुन रहे हैं और इसके आधार पर वो अपना डिसीजन देंगे। लेकिन दूसरा जो केस आप देख रहे हैं वो मीडिया कर रहा है, मीडिया अपनी तरफ से आरोप लगा रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, पता नहीं किस तरीके से कर रहा है, अपनी तरफ से निर्णय दे रहा है, यानी कि यूं कह लीजिए कि जो जनचेतना है, जो जनमत है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मीडिया ट्रायल है ये मीडिया का एक नकारात्मक पक्ष है। तो इस तरीके से चूंकि मीडिया की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है तो मुझे लगता है, और मीडिया आपके सिलेबस में है भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चूंकि डेमोक्रेसी में, तो इस पर आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। इसके कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि न्यूज में ही कि हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने प्राइवेट लोगों से लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग की है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसे लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट, जब तक इस शब्द के अर्थ को आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि क्या होने जा रहा है, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में पढ़ें, और सिंपल सा इसका अर्थ होता है कि जैसे एक वस्तु का उत्पादन होना है, वहां से लेकर उत्पादन होना है, से लेकर के वो उत्पादन किसके लिए होगा, वो कंज्यूमर के लिए होगा, उपभोक्ता के लिए होगा, तो वहां उत्पादन के बिंदु से लेकर के, और उत्पादन कच्चे माल की सप्लाई से शुरू हो जाता है, से लेकर के और पूरे के पूरे कंज्यूमर तक पहुंचने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, कच्चे माल की ढुलाई होगी, वो फिर फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री में चीजें बनेंगी, फिर फैक्ट्री में उस चीज की पैकेजिंग होगी, फिर वेयर हाउस होगा, गोडाउन होगा, उस गोडाउन में रखा जाएगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वर्गीकरण होगा, और फिर वो सप्लाई चेन के जरिए वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये सारी बातें लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं भारत ईरान संबंध के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा, विस्तार से बातें मैं नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी सी बातें। ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, सबसे पहली बात तो यह कि जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें बकायदे दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध। चलिए, ईरान हमारा एकदम पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी तो है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत ईरान संबंध हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि मैंने चर्चा की थी भारत ईरान संबंधों को लेकर के, जब चाबहार बंदरगाह से जो रेल मार्ग बनाने की बात थी, अब चाइना उसे ले रहा है, भारत ने उससे अपने को विड्रा कर लिया है, तो इसको आधार बना करके मैंने बात की थी। और उससे लगभग कुछ महीने पहले तीन चार महीने पहले की बात होगी, जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था, खासकर परमाणु अस्त्रों को लेकर के। तो उस समय उसने कहा था कि ईरान के साथ सभी देश संबंध तोड़ लें, तो भारत ने कुछ वक्त मांगा था, तो भारत ने भी फिर ईरान से अपना तेल मंगाना खत्म कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। उस समय भी मैंने भारत ईरान संबंधों के बारे में आपसे बात की थी, और अभी फिर से भारत ईरान संबंध का चुनाव मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि आपने न्यूज में सुना है, अखबारों में आप पढ़ भी रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री अभी रूस की यात्रा पर गए थे, और जब वापस आ रहे थे तो बिना शेड्यूल्ड के वो अचानक ईरान चले गए, राइट। और ठीक इसी तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी रूस जा रहे हैं, तो वो भी तेहरान होते हुए जाएंगे, यानी कि ईरान होते हुए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत ईरान के साथ संबंधों में जो थोड़ी सी तल्खियां आने लगी हैं या आ गई हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रहा है। इससे क्लियर हो रहा है। अब आप देखें कि ये तल्खी क्यों आई है, हम इस पर नहीं जा रहे कि ये तल्खी क्यों आई है ना, तल्खी आने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका ने चूंकि प्रतिबंध लगा दिया था ईरान पर, तो अमेरिकी दबाव भारत पर था कि वो ईरान से तेल का आयात न करे, अपने संबंधों को तोड़े, तो उसकी वजह से फिर भारत ने उस तरह का कुछ निर्णय लिया। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में ईरान हमें कैसे अपना बहुत ज्यादा बड़ा मित्र समझेगा। लेकिन अब कुछ समय से जो चीन है उसने ईरान में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी है जबरदस्त रूप से, और कई तरह की बातें अब सुनने में आ रही। पहला तो यह है कि अब चीन ईरान में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है, लगभग 400 अरब डॉलर, और वो निवेश करेगा बकायदे वहां की सड़कों में, वहां की रेल बनाएगा, वहां के बंदरगाह, स्कूल और अस्पताल बनाएगा। अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि चीन जब निवेश करेगा तो ईरान चीन के ज्यादा करीब पहुंचेगा, राइट। अब जब चीन ईरान के करीब पहुंच जाएगा तब आप देखिए कि सिनेरियो क्या होगा। चीन ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब पता लगा कि ईरान भी चीन के पाले में शामिल हो गया, उसके टीम में शामिल हो गया है, तो ये तीन शक्तियां एक हो जाएंगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि भारत के लिए इस तरह का गठजोड़ इस क्षेत्र में बनना ज्यादा हितकर नहीं होगा, ये भारत के लिए हितकर नहीं होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि अपनी जो कूटनीतिक गतिविधियां हैं खासकर ईरान के मामले में तेज कर दी हैं, ताकि ईरान के साथ भारत के संबंध बेहतर बने रह सकें और चीन की जो घुसपैठ है वहां कम हो सके। तो ये इसका बेसिक है। तो दोस्तों ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए अब होता यह है कि सिविल सर्विस के बारे में, तैयारी के बारे में, भारत ईरान संबंध को लेकर के आपको एक बेसिक जानकारी है, और इसके बाद इस तरह से लगातार आपको उसे अपडेट करते रहना पड़ता है, तभी जाकर के सिविल सर्विस की अच्छे से तैयारी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। मानस झा दिल्ली से, तेजिंदर सिंह पंजाब से, अनीता यादव, अमृत नारायण सतपति, दीक्षा सिंह, विवेक कुमार झारखंड से, और सगुना श्रीमाली गुजरात से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।